الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا و مولانا محمد وأصحاب سيدنا و مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے تربیت اولاد. یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ہم تمام حضرات اپنی اولاد کی تربیت سے غافل ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ والدین کی عدم توجہی کی وجہ سے اولاد بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے، اور بعد میں جب وقت گزر جاتا ہے اور اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر سر پکڑ کر روتے ہیں. حالانکہ ابتدا ہی سے اگر تربیت کی جائے تو پھر اس کے نتائج اور ثمرات کچھ اور ہوتے ہیں. اسی لیے ہم نے اس اہم موضوع کو اپنا عنوان سخن بنایا، اور اسی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچانے کا حکم دیا. پہلے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور اس کے بعد چند تفسیری فوائد. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، ارشاد ربانی ہوا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ قرآن کہہ رہے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، کس سے بچائیں؟ آگ سے، جہنم کی آگ سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں جو قرآن ہمیں روک رہا؟ آپ کہیں گے ہم نے تو کوئی ایسا کام کیا نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہنم کے مستحق ہو رہے ہیں۔ لیکن قرآن کہہ رہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، قو انفسکم و اہلیکم نارا۔ جب قرآن کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یقیناً ہمارے اعمال ایسے ہوں گے کہ جو ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر قرآن ہمیں کیوں روک رہا؟ ایک بچہ جو بالکل ناسمجھ ہے آگ کی طرف بڑھتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ مجھے جلا دے گی، اس کو یہ شعور نہیں ہے کہ اس کے اندر تمازت ہے، گرمی ہے، جلانے کی خاصیت ہے، اگر میں نے انگلی ڈالی یا میں اس میں گیا تو میں جل جاؤں گا، ناسمجھ ہے، اسے شعور نہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہے تو اسے پکڑ لیتے ہیں، اسے کھینچتے ہیں، اگر دیکھا کہ بہت قریب پہنچ گیا تو دوڑ کر اسے پکڑا اور کھینچ لیا، ایسا نہ ہو کہ آگ میں چلا جائے۔ بچہ ہے، کمسن ہے، لاشعور، کسی چیز کا اسے شعور نہیں، سمجھ نہیں۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم جہنم کی طرف اس طرح بڑھ رہے ہو جس طرح آگ پر پتنگے، تم اس طرح بڑھ رہے ہو جہنم کی طرف۔ اور سرکار فرماتے ہیں میری کیفیت یہ ہے کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، میں تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں۔ اس حدیث شریف سے یہ پتا چلا کہ واقعی ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اسی لیے قرآن ہمیں روک رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اب قرآن نے ہمیں بچانے کا حکم دیا۔ جب ہم غور کرتے ہیں، ہم سب اپنے اعمال پر غور کریں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہر انسان اپنا اچھا برا جانتا ہے، اپنے عیب و ہنر کو جانتا ہے، اپنے گناہوں کو جانتا ہے، اپنی نیکیوں کو جانتا ہے، اس نے کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے، کس کو دھوکہ دیا، کس کے ساتھ نیکی کی، کس کے ساتھ برا سلوک کیا، خود جانتا ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے اور دیکھے تو کیا ہوگا؟ پتہ چلے گا واقعی ہم نے ایسے کام کیے ہیں کہ ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ امانت میں خیانت، جہنم کی طرف بڑھنا ہے۔ بیواؤں یتیموں کے مالوں کو کھانا، جہنم کی طرف بڑھنا ہے۔ ناجائز جائیداد پر قبضہ کرنا، جہنم کی طرف بڑھنا ہے۔ کسی کو دھوکہ دے کر مال چھین لینا، جہنم کی طرف بڑھنا ہے۔ کسی کو قصدن جھوٹ بول کر اس کا دل دکھانا، اس کے مال کو، اس کی عزت کو لوٹنا، جہنم کی طرف بڑھنا ہے۔ والدین کی نافرمانی، جہنم کی طرف بڑھنا ہے۔ قصدن نمازوں کا ترک کر دینا، جہنم کی طرف بڑھنا ہے۔ ارے یہ سارے اعمال ایسے ہیں جو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ سب جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور یہی کام ہم کر رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ हमने अमाल ऐसे किए, इसीलिए कुरान कह रहे बचाओ, अपने आप को भी बचाओ और अपने अहलो आयाल को भी बचाओ। अब सवाल ये पैदा हुआ, इस आयत में तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो आयाल को आग से, जहन्नम की आग से। ये तो हमने समझ लिया, चलो ठीक है, हमें हुक्म दिया गया हम अपने आप को बचाएं अपने अहलो आयाल को बचाएं। लेकिन इसी कुरान मजीद फरकान हमीद में हमें एक आयत और मिलती है जो खालिक कायनात दुआ के तौर पर हमें सिखा रहा, और मशहूर आयत है, मशहूर दुआ है, आप सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। मशहूर दुआ, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया और आखिरत की सुरखरुई अता फरमा, वके ना अजाब नार, और हमें आग के अजाब से बचा ले, हमें आग के अजाब से बचा ले। अब दो चीजें हो गई, पहली आयत में क्या कहा, कू अनफुसकुम, तुम बचाओ, और इस आयत में हमें दुआ सिखाई गई मुझसे दुआ करो, वके ना, मौला हमें बचा अजाब नार, आग के अजाब से। बात समझ में आ रही है, दो चीजें हो गई ना, एक आयत में फरमाया तुम अपने आप को बचाओ और अपने अहलो आयाल को जहन्नम की आग से, और ये दुआ जो हमें सिखाई खालिक कायनात ने, ये भी कुरान में मौजूद, तुम मुझसे दुआ करो, मौला दुनिया आखिरत की सुरखरुई अता फरमा, वकीना अजाब नार, और हमें आग के अजाब से बचा ले। अब दो बातें हो गई, सवाल ये पैदा हुआ बचाएगा कौन, हम अपने आप को जहन्नम से बचाएंगे या खालिक कायनात हमें बचाएगा। दो बातें हो गई ना, दुआ में तो कहा मुझसे दुआ करो, वकीना अजाब नार, मौला तू बचा ले, और इस आयत में कहा कू अनफुसकुम व अहलीकुम, तुम बचाओ अपने आप को अपने अहलो आयाल। ये कंफ्यूजन पैदा हुआ, हमने उलमा की बारगाह में अर्ज की ये इरशाद खुदावंदी हमारी नाकिस अकलों में नहीं आया। एक आयत में अल्लाह फरमाता है तुम अपने आप को बचाओ, और इस आयत में फरमाया मुझसे दुआ करो मैं बचाऊं, मौला तू हमें बचा, तो कौन बचाएगा? उन्होंने कहा सुनो, तुम भी अपने आप को बचाओगे और खालिक कायनात भी तुम्हें बचाएगा, तुम भी बचाओगे और वो भी बचाएगा। कैसे? तुम इस दुनिया में नेक आमाल करके और औलाद की नेक तरबियत करके अपने आप को जहन्नम से बचाओ, और खालिक कायनात कल कयामत में उन आमाल को कबूल करके वो तुम्हें बचा लेगा। अब बात समझ में आई, हमें इस दुनिया में क्या करना है, नेक आमाल करना और औलाद की सही तरबियत करनी है, ये क्या है, जहन्नम से बचना है। आपने पांच वक्त नमाज पढ़ी, जहन्नम से बचना है। आपने रोजा रखा, ये जहन्नम से बचना है। हज किया, ये जहन्नम से बचना है। ये तमाम चीजें नेक अमाल आपके और जहन्नम के दरमियान ढाल है, रुकावट है। ये क्या है, ये जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता। वालदैन की फरमा बरदारी, ये जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को अदा करना, ये जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता। यानी ये नेक अमाल तुम इस दुनिया में करते रहो, तुम अपने आप को बचा रहे हो जहन्नम से, और जब वहां पहुंचोगे खालिक कायनात इनको कबूल करके तुम्हें जहन्नम से बचा ले। अब बात समझ में आ गई ना, अल्लाह भी हमें बचाएगा और हमें भी बचाना। हम ये समझते हैं कि हमने नमाज पढ़ ली, बहुत बड़ा काम कर लिया, सुबह उठ गए, फजर की बाजमात हमने नमाज अदा कर ली, पता चला पूरा घर सो रहा, बीवी बच्चे सब सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, साहब बहादुर खुद उठे, अकेले गए मस्जिद में जाके नमाज पढ़ी, आके वो भी सो। नहीं, ये बचाना नहीं है, ये तो आपने अपने आप को बचाया है। कुरान ने सिर्फ अपने आप को बचाने को नहीं कहा, अगला लफ्ज फरमाया वअहलीकुम, अपने अहलो आयाल को भी बचाओ। मतलब ये है कि जब फजर की नमाज के लिए उठो तो न सिर्फ खुद उठो, अपने बीवी बच्चों को भी फजर के लिए उठा दो। बच्चों को भी लेकर मस्जिद में चले जाओ, बचपन से उसको जब आदत होगी मरते दम तक नमाज नहीं छोड़ेगा, यह हकीकत। और अगर किसी से कहें, कहते नहीं जी बड़ा होगा तो पढ़ लेगा, अभी तो बच्चा है, बड़ा होगा तो पढ़ लेगा, जब बड़ा होता है तो फिर नहीं पढ़ता, फिर वो बाप के काबू में ही नहीं आता। बचपन से तरबियत करो। तो वअहलीकुम का मतलब यह है कि सिर्फ अपने आप को नमाज पढ़ के जहन्नुम से नहीं बचाना है, अपनी औलाद को भी पढ़वाना। और याद रखिए, ये सदकाए जारिया है, नेक औलाद जो है ये भी सदकाए जारिया है। हदीस शरीफ में आता है जिसका मफहूम यह है कि एक आदमी गुनाहगार सियाकार दफन कर दिया गया, एक फरिश्ता एक खान की सूरत में एक सवाब लेकर उसकी कब्र पे खड़ा और कहता है, ए साहिबे कब्र अमीक, यानी ए गहरी कब्र में सोने वाले, तेरे लिए ये इसाले सवाब का तोहफा। वो कहेगा मेरे लिए? और उसकी वजह से उसका दर्जा भी बुलंद होगा। मेरा दर्जा बुलंद? मैं तो गुनाहगार आदमी, मैंने तो कोई नेक काम किया नहीं, किस काम की वजह से, किस अमल की वजह से मेरा दर्जा बुलंद हुआ, कौन सा मेरा ऐसा अमल था? फरिश्ता कहेगा, तेरा अमल कोई ऐसा नहीं था, अपने पीछे जो नेक औलाद छोड़कर आया है उसने दुनिया में नेक अमल किया है और ये इसाले सवाब किया है, इस वजह से तेरा दर्जा बुलंद। देखा आपने, नेक औलाद, आपने बचपन से औलाद को नमाजी बनाया, उसको सच बोलना सिखाया, उसको खुलूस और मोहब्बत उसके दिल में पैदा की, उसके दिल में मोहब्बत रसूल पैदा की, उसके दिल में औलिया की मोहब्बत पैदा की, उसके दिल में अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत पैदा की, उसको नेक मुसलमान बना दिया। आप इस दुनिया से चले गए, कब्र में पहुंच गए, औलाद दुनिया में नेक अमल कर रही है, सवाब आपको मिल रहा। ये क्या है? सदका जारिया है। देखिए, कुछ आमाल इंसान के ऐसे हैं जो दुनिया में करता है, सवाब मिल गया, उसका सवाब जारी नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि वो दुनिया से चला जाए फिर भी सवाब जारी। लेकिन कुछ आमाल ऐसे हैं जिन्हें सदका जारिया कहा जाता है, जिनका सवाब जारी रहता है। मिसाल के तौर पे, आपने किसी मस्जिद में एक कुआं खुदवा दिया पानी के लिए, जब तक वो कायम रहेगा मुसलमान पीते रहेंगे, सवाब मिलता रहे, सवाब जारिया है। जिसने खुदवाया दुनिया से चला गया, लेकिन अमल जारी है, सवाब जारी है, मुसलसल सवाब मिलता रहेगा, दर्जे बुलंद होते रहे, इसको कहते हैं सवाब जारिया। एक सहाबी नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, मैं उनके लिए कौन सा ऐसा अमल करूं कि उनको सवाब मिल जाए, मरने के बाद सवाब मिल जाए? सरकार ने फरमाया पानी। इन्होंने फिर सवाल किया, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया पानी। तीसरी मर्तबा सवाल किया, फिर फरमाया पानी। क्या मतलब? उनके लिए एक कुआं खुदवा दो, सवाब मिलता रहेगा। उनका नाम था हजरत साद रदी अल्लाह ताला। तो इन्होंने क्या किया, जाकर कुआं खुदवा दिया और आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी वालदा के लिए इसाले सवाब के लिए कुआं खुदवा दिया। सरकार ने फरमाया हाजा ले उम्मे सादिन, ये सात की मां के लिए है। कुएं के लिए फरमाया हाजा ले उम्मे सादिन, ये सात की मां के लिए है। क्या मतलब? क्या कुआं उनकी मां के लिए था? नहीं, कहने का मकसद यह था कि ये कुआं तो आम मुसलमानों के लिए है, इसका सवाब जो है वो सात की मां के लिए, यानी जब तक मुसलमान उससे पानी पीते रहेंगे, प्यास बुझाते रहेंगे, जब तक वो कुआं कायम रहेगा, साथ की मां को इसका सवाब मिलता रहे। इसको कहते हैं सदका जारिया, सवाब जारिया। तो हमें इस दुनिया में ऐसे आमाल भी करने चाहिए जिनका सवाब हमारे दुनिया से जाने के बाद भी जारी रहे। जाने के बाद भी जारी रहे, उसे क्या कहते हैं? सवाबे जारिया। उन्हीं में से एक सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया औ वलदुन साले, नेक औलाद। वलदुन साले, नेक औलाद। क्यों? आपने औलाद की सही तरबियत की, आपने उसको नमाजी बनाया, आपने उसको सच बोलने की तलकीन की, आपने उसके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा की, औलिया की, अंबिया की, अहले बैत की, आइमे मुज्तहिदीन की, सबकी मोहब्बत पैदा की, सच्चा पक्का मुसलमान आपने बनाया। अब अगर वो बच्चा दुनिया में नमाज पढ़ रहा है अपने बाप की तरबियत की वजह से और बाप दुनिया से जा चुका है, कब्र में सवाब जारी है, कब्र में सवाब जारी है। इसलिए औलाद की तरबियत बहुत एहतियात से करनी चाहिए। और याद रखिए, मैं बड़ी खास बातें आपको बता रहा हूं, अगर आप तवज्जो से सुनेंगे और अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। हमारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं, गफलत, कामों में लगे हुए। यह एक फैक्ट है, हकीकत है कि अगर औलाद को दुरुस्त करना है और उसकी सही तरबियत करनी है, पहले अपने आप को दुरुस्त करो, पहले अपने आप को दुरुस्त करो। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं मेरा बच्चा सच बोले, यही चाहते हैं ना? नहीं चाहते? मेरे ख्याल से आप लोग नहीं चाहते, तो फिर बोलो ना, इसमें शर्माने की क्या बात। हम चाहते हैं कि सिर्फ एक साहब चाहते हैं, हाजी साहब, उन्होंने हाथ उठाया, और कोई नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सच बोले, तो उसका क्या तरीका है? पहले हम खुद सच बोलें, है ना बात? अगर आप खुद बताइए, अगर बाप बेटे के सामने झूठ बोलेगा और फिर उससे कहेगा बेटा सच बोलो, वो बोलेगा? कभी नहीं बोलेंगे कि अब्बा जान तो खुद तो झूठ बोल रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं सच बोलो। और ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं अक्सर तकरीर में जिक्र करता हूं, बड़ी दिलचस्प बात है। हमारा तवज्जो नहीं, ध्यान नहीं। कोई आया मिलने के लिए, दरवाजे पर दस्तक दी, आप मिलना नहीं चाहते। ऐसे लोग होते हैं ना बहुत से, मिलना नहीं चाहते, उनका नाम सुनते ही मूड खराब हो जाता है, अरे ये क्यों आ गया, चेहरे का जोग्राफिया ही बदल जाता है, ये क्यों आ गया। बेटे से कहा जाओ, कह दो अब्बा घर पे नहीं, झूठ हुआ या नहीं? आप घर पे हैं ना, और कह दिया बेटे से जाओ कहो अब्बा घर पे नहीं है, और बेटा इतना मासूम होता है, छोटा बच्चा, वो जाकर उनसे कहता है अब्बा कह रहे हैं घर पे नहीं है, झूठ हो गया? आप झूठ में शामिल हुए, बेटे को शामिल किया, वो सच बोलेगा? और फिर उसको बिठाकर कह नहीं बेटा सच बोलो, मुझसे तो झूठ बुलवाया और खुद कह रहे हैं सच बोलो, नहीं हो सकता। पहले हमें सच बोलना है, हम खुद नमूना बने, खुद सच बोले, फिर तंबी करें सच बोलो, देखो फिर कैसा जबान में असर हो। आपने सुना होगा सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जीलानी हसनी अल हुसैनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, जब इल्म दीन हासिल करने के लिए रवाना हुए, वालदा ने 40 दीनार उनकी सदरी में अंदर सी दिए और एक नसीहत की, बेटा अब्दुल कादर झूठ ना बोलना, झूठ नहीं बोलना, वादा कर लिया ठीक है नहीं बोलना। चले वहां से, काफले के साथ जा रहे हैं, रास्ते में डाकुओं ने हमला किया, लूट लिया सारे काफले। एक डाकू इनके पास भी आ गया, बेटा तुम्हारे पास क्या है? फरमाया 40 दीनार। अरे ये अजीब बच्चा है, ये बता रहे 40 दीनार? उसने कहा हो सकता है झूठ बोल रहा हो, चला गया। दूसरा आया, उससे कहा 40 दीनार, तीसरे से कहा 40 दीनार, जो आके पूछता है तुम्हारे पास क्या है, कहते 40 दीनार। सारे काफले को लूट लिया। अब पहुंचे सरदार के पास, तो सरदार ने कहा कोई रह तो नहीं गया, सबको लूट लिया? जी सरदार, सबको अच्छी तरह हमने खूब, जो कुछ था सब माल असबाब सब छीन लिया, कोई रह गया? नहीं। हां एक बच्चा है, वो बड़ा अजीब है, जब उससे पूछते हैं तेरे पास क्या है तो कहते 40 दीनार। कहा मेरे पास ले आओ। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर डाकुओं के सरदार के पास, ये है वो बच्चा, हां ये है, तुम्हारे पास क्या है? वही फरमाया 40 दीनार। कहां है? कहा ये मेरी जो सदरी है इसके अंदर सी रखे मेरी वालदा ने, जेब में नहीं अंदर सी दिए। अच्छा उधेड़ो, उसको खोला उधेड़ कर देखा वही 40 दिनार निकला। बड़ा हैरान हुआ, कहा तुम जानते हो हम कौन है? हां तुम डाकू, हमने क्या किया है? तुमने मेरे पूरे काफले को लूटा। अरे तो तुमने क्यों बता दिया कि 40 दिनार, और ये तो जेब में भी नहीं अंदर थे, ना बताते हमें कैसे पता चल जाता? हमें नहीं पता चलता, तुम्हारा माल बच जाता। कहा माल तो बच जाता लेकिन मां से किया हुआ वादा जो था वो वफा नहीं होता। जब मैं अपने घर से चला था मेरी मां ने मुझसे वादा लिया था, बेटा अब्दुल कादर कभी झूठ ना बोलना। मैंने वादा कर लिया था इंशाल्लाह कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं मां से किया हुआ वादा निभा रहा। माल जाए तो चला जाए लेकिन मां से वादा किया है मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये अल्फाज गौसे आजम ने इस अंदाज में अदा फरमाए कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने कहा देखो ये बच्चा मां से क्या हुआ वादा निभा रहा है और मैं रब से जो वादा करके आया था मैं वो भूल गया, मैं तो नाफरमानी में लग गया। उसी वक्त उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो। जब वो मुसलमान हुआ उसके जितने डाकू थे उन्होंने कहा सरदार जब डाका डालने में हमारा सरदार है तो ईमान लाने में भी सरदार है, तू मुसलमान है हम सब मुसलमान। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मेरे गौस की एक निकाह ने हर कज़ाक को बंदे रज़ाक बना दिया, हर कज़ाक को बंदे रज़ाक बना दिया, और ऐसी सच्ची तौबा की कि फिर उन्होंने इबादत और रियाजत करके वो सब जो थे विलायत के किसी ना किसी मकाम पर पहुंचे। एक सच ने 60 डाकुओं को नेक बना दिया, टाइप करा दिया। असर कैसा था जबान में? मां की जबान में असर था ना, वो मां भी तो सच्ची मां थी, वो सच बोलने वाली मां थी, इसीलिए ऐसा असर हुआ कि बेटे ने सच बोला और बेटे की जबान में ऐसा असर हुआ कि 60 डाकुओं ने उसी वक्त तौबा कर ली। कहने का मकसद यह कि हम सच बोलेंगे तब औलाद सच बोलेगी, हम नमाज पढ़ेंगे तब औलाद नमाज पढ़ेगी। बाप तो फजर के वक्त पढ़ा सोता रहे और उठ के कहे बेटे चल नमाज पढ़, वो कहेंगे अब्बा खुद तो पढ़ते नहीं, मुझसे कह रहे जाओ। आप फजर के वक्त उठ जाइए, बीवी बच्चों को उठा दीजिए, फिर आप देखें आपके अमल को देखकर बच्चा बचपन से देखेगा कि मैंने कभी बाप को नमाज छोड़ते हुए नहीं देखा, वो भी वैसा ही करेगा और कभी नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात, हम आपस में गुफ्तगू करते हैं तो बहुत से लोगों की आदत है गालियां देते हैं और ऐसे देते हैं जैसे मुंह से फूल झड़ना कोई बात ही नहीं। जैसे हम किसी को मुखातिब करते हैं तो वो गालियों से ही मुखातिब करते हैं, जैसे कहते हैं ना तकिया कलाम ही यही है, अल्लाह ताला माफ रखे। बहुत सी औरतें छोटे बच्चों को लेके आते कमसिन बच्चों को, हजरत इस पे दम कर दें ये गालियां देता, गालियां देता है ये 4 साल का बच्चा 5 साल का बच्चा गालियां देता। हां हजरत पता नहीं क्या इसको है, ऐसी ऐसी गालियां देता है कि बस तौबा तौबा। मैंने कहा इसके घर में कोई गाली देता है? नहीं 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 ऐसा तो नहीं। मैं इसकी क्या माजल्ला ऊपर से इल्का हो रही क्या इसके ऊपर? किसने सिखाई इसको? कोई ना कोई इसके सामने देता है जब ये भी दे रहा है। कहते हाँ इसके बाप को आदत है वो दे देते कभी कभी, कभी कभी नहीं ये रोजाना की बात है। तभी तो इनको अजबर याद हो गई पूरी, ऐसे कैसे याद हो गई? बच्चा जो है वो एक सफेद कागज की मानिंद है, सफेद कागज जो कुछ लिख दोगे वही उस पर तहरीर रह जाएगी। बचपन में जब वो बाप के मुंह से गालियां सुनेगा तो वही तो याद करेगा। अरे अगर वो नाते सुनता तो याद नहीं करता, अगर दुरूद पाक सुनता तो याद नहीं करता, अगर अहलुल्लाह के वाकयात सुनता तो याद नहीं करता, अगर बाप को नमाज पढ़ते हुए देखता तो खुद नहीं पढ़ता, कैसे हो गया? उस तरफ तवज्जो नहीं है, दम कर दीजिए। मैंने कहा दम से गालियां नहीं जाएंगी, अपने आप को सही कर लो गालियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। हम अपने आप को सही नहीं करते, वालदैन आपस में लड़ते हैं, मियां बीवी लड़ रहे हैं एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, बाप गालियां दे रहे हैं या कभी ऐसा भी होता है कि बीवी भी गालियां देने शुरू हो जाती एक दूसरे को, और बच्चा सुन रहा, छोटा सा बच्चा, कम सीन, मासूम, उसने देखा, उसको क्या पता, उसने सोचा ये भी कोई अच्छी चीज हो, उसने भी देना शुरू कर दी। बाप तो चला गया, उसने मां को गाली देके बुलाया, अब इसको गुस्सा आ रहा, ये कैसे हो गया। अपने आप को दुरुस्त कर लो, औलाद खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगी। ये बड़ी नुक्ते की बात है, ये फैक्ट है, हकीकत है। हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते। दूसरे ये कि बच्चे पर किसी ना किसी का रौब होना चाहिए। छोटा बच्चा होता ना, लाड करते नहीं थे, ये तो बहुत अच्छा है। एक बच्चा भागता हुआ आया, बाप के ऊपर चढ़ गया कंधे पर, और दो चटाचट थप्पड़ लगाए बाप के मुंह पर। मैंने कहा ये क्या हुआ? कहे नहीं बच्चा है, ये मजाक कर रहा है। मैंने कहा मजाक कर रहा है, जब बड़ा होकर मारेगा ना पता चल जाएगा कैसे मजाक कर रहा है। उसी वक्त रोकना चाहिए, उसी वक्त। अगर बच्चा गलत काम करे आप उसी वक्त उसको रोकें, उसको क्या पता क्या सही क्या गलत। आप उसे रोकेंगे तब उसको पता चलेगा। हम शुरू में लाड करते हैं, प्यार करते हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है फिर ऐसी हरकत करता है तो फिर परेशान होते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ऐसी बात नहीं, हमें खुद सही होना चाहिए। बल्कि मैं यहां तक कह दूं कि औलाद की तरबियत उसकी पैदाइश से पहले से शुरू होती है। अब आप हैरान होंगे ये कैसी तरबियत। मां के खून का असर होता है, मां के दूध का असर होता है। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादर जीलानी, जब विलादत हुई 15 सिपारे आपको याद थे, मकतब में बिठाया तो 15 सिपारे तो वैसे ही पढ़ लिए। उस्ताद ने कहा कहां से याद कर लिए? कहा जब मैं पेट में था तो मेरी मां पढ़ती थी, मैं याद करता रहता। उस वक्त उस कैफियत में अगर औरतें अपने आप को इन तमाम फुरुआत से बचाएं, नाते सुनें, दुरूद पाक का वर्द करें और दीकर इबादत करें, तो फिर औलाद भी नेक पैदा होगी। औलाद फिर नेक पैदा होता। हजरत इमाम मोहम्मद गजाली और इमाम अहमद गजाली, जलील कदर इमाम गुजरे वक्त के, मामूली बात नहीं। उनका एक इल्म, दबदबा, मर्तबा और वक्त के उलमा ने उनकी इल्मियत को तस्लीम किया। एक भाई दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। इमाम मोहम्मद गजाली बड़े थे, इमाम अहमद गजाली छोटे थे। छोटे भाई बड़े भाई के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। एक दिन वो मां की खिदमत में हाजिर हुए, इमाम मोहम्मद गजाली, अम्मा देखो ये मेरा भाई है, मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता। इससे पूछो क्यों नहीं पढ़ता, लोगों पे गलत असर पड़ेगा, वो कहेंगे पता नहीं क्या मसला है, कोई ऐसा काम इसने किया या कोई ऐसी बीमारी या क्या वजह है, भाई सगा भाई सगे भाई के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहा, कोई वजह तो है। तो मां इससे पूछो ही क्यों नहीं पढ़ता। अच्छा, दोनों जो थे आलिम दीन भी थे, वली कामिल भी थे। सिर्फ आलिम दीन नहीं, विलायत के मकाम पर भी थे। मां ने बुलाया अहमद गजाली, बेटा तुम अपने बड़े भाई मोहम्मद गजाली के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते। इन्होंने कहा अम्मा मैं नमाज क्या पढ़ूंगी, नमाज पढ़ाते हैं तो मसले सोचते रहते, इनका ध्यान अल्लाह की तरफ थोड़ी होता है, मसलों की तरफ होता है, मैं क्या नमाज पढ़ू। यानी उन्होंने अपने कष्ट से ये जान लिया कि मेरा भाई जो इमाम है ये क्या सोच रहा है। देखा आपने, इस मकाम पर थे वो, क्यों नमाज नहीं पढ़ते, मैं क्या नमाज पढ़ूंगी, नमाज पढ़ाते तो मसले सोचते रहते, इनका ध्यान अल्लाह की तरफ थोड़ी, मसलों की तरफ। तो जानते हो मां ने क्या कहा, मां ने कहा बेटा तुम दोनों एक जैसे हो, एक दूसरे के पीछे पढ़ लिया करो। क्यों, तुम इसलिए नहीं पढ़ते ना कि इसका ध्यान अल्लाह की तरफ नहीं मसलों की तरफ। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कौन सा अल्लाह की तरफ, तुम्हारा इसकी तरफ, तुम तो इसको चेक कर रहे हो, तुम इसलिए नमाज नहीं पढ़ रहे कि इसका ध्यान अल्लाह की तरफ नहीं मसलों की तरफ, तो तुम्हारा कौन सा अल्लाह की तरफ है, तुम्हारा इसकी तरफ इसके मसलों की तरफ, दोनों एक ही जैसे हो, पढ़ लो एक दूसरे के। वो दर्जे मर्तबे वाली मां थी जिसने इमाम अहमद गजाली मोहम्मद गजाली जैसे बच्चे जने हो, वो मां भी तो फिर मां थी। वो आजकल की माओं की तरह थोड़ी जो टेलीविजन के सामने बैठ के ना गाने सुने, तमाशे देखें, तो फिर ऐसे ही पैदा होंगे ना जो कौम का बेड़ा गर्क कर देंगे। फिर इनकी गोद में इमाम अहमद गजाली जैसे आएंगे, कौम का बेड़ा गर्क करने वाले पैदा होंगे। माओ को चाहिए कि उस कैफियत में अपने आप को तमाम फुरुआत से बचाएं और इबादत करें, ऐसी कैफियत पैदा करें कि जो पैदा होने वाला बच्चा है वो भी सच्चा पक्का मुसलमान। तरबियत वहां से शुरू होती, और जब बच्चा पैदा हो और जब वो बोलने के काबिल हो, बुजुर्गान दीन ने फरमाया पहला लफ्ज उसे सिखाइए अल्लाह। अब आप देखते हैं ना, माहौल से बच्चा सीखता है। हमने कभी एक एक लफ्ज बच्चे को नहीं सिखाया, आपस में बोलते रहते, वो सुनता है बोलना शुरू हो जाता, जो सुनता है वो बोलता है और जो सुनता नहीं वो बोलता नहीं। इसीलिए आप देखें, जो बच्चा पैदाइशी बहरा होगा वो पैदाइशी गूंगा भी होगा, वो सुनेगा ही नहीं कुछ। जब कोई आवाज उसके कान में नहीं जाएगी, कोई लफ्ज ही नहीं जाएगा, बोलेगा क्या? तो इसलिए उसके कान में पहला लफ्ज आए अल्लाह। और अजान जो दी जाती इसीलिए तो है, उसको पता चल जाए मैं मुसलमान के घर में पैदा हूं। अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उसके कान में। तो जब वो बोलना शुरू करें, पहला लफ्ज सिखाओ अल्लाह, बार बार कहते रहो। जब उसकी जबान लफ्ज अल्लाह से, इसमें अल्लाह से जब जबान खुलेगी, इब्तिदा अच्छी होगी, इंतहा भी अच्छी होगी, फिर जबान पर कोई गलत कलमा नहीं आएगा। और हम खुद अपनी जबानों की हिफाजत करें, बच्चों के सामने गालियां न दें, किसी को बुरा भला ना कहें, किसी की गीबत ना करें, बुराई ना करें, बच्चे भी फिर वैसा ही करें। और अगर बाप उनके सामने गालियां देगा, उसको क्या पता ये अच्छी चीज है क्या गलत है, जो सुनेगा वही याद कर लेगा, वही दोहरा देगा। ये है ना, आप करके देख लें, जो आप बच्चों के सामने करेंगे बच्चे वही करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे सही मुसलमान बने, गालियों से दूर रहें, फवाही से, गलत बातों से दूर रहें, अपने आप को, अपनी जबान को काबू में रखें, अच्छी बात उनके सामने निकालें, वही बात वो याद करेंगे, सुनेंगे, याद करेंगे, और वही उनकी जबान से निकले। असल चीज ये है, मां बाप की तरबियत का बड़ा असर है। हजरत मूसा अलैह सलाम कोह तूर पर तशरीफ ले जाते थे, वालदा मोहतरमा दुआ करती थी, मौला ये मेरा बच्चा आ रहा है, मूसा से कोई गलती हो जाए मौला माफ फरमा दे, मौला कोई गलती हो जाए नजरअंदाज कर दे, दरगुजर फरमा दे, इसे माफ फरमा। मां का विसाल हो गया, मूसा अलैहि सलाम को हितूर पर गए, आवाज आई मूसा संभल के आना, तुम्हारी दुआ करने वाली अब पीछे नहीं रही, दुआ करने वाली नहीं रही। ये है मां का दर्जा। अल्लाह ने हुकूक रखे वालदैन के औलाद पर और औलाद के वालदैन पर। मां बाप की जिम्मेदारी यह है औलाद की सही तरबियत करें, ताकि उसकी नेकी का सिला वालदैन को मिले। और औलाद की जिम्मेदारी यह है कि वालदैन की फरमाबरदारी करे, उनके साथ उसने सुलूक करे। कुरान ने कहा उफ़िम वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा, जब तुम उनसे बात करो तो अच्छे अंदाज में बात करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ जिसका मफहूम यह है कि फजर के बाद मोहब्बत के साथ वालदैन के चेहरे को देख लेना एक हज का सवाब। कहा हुजूर बार बार देखें, कहा बार बार सवाब मिले। वालदैन एक नेमत है जो हर इंसान को जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलती, बार बार नहीं मिलती। तो सिर्फ जिनका चेहरा देखना हज का सवाब है, तो उनकी खिदमत करना कितना सवाब हो, उनकी दुआएं लेना कितना सवाब हो। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, मन जारा कब्र अबवैही औ इहदाहुमा, जिसने अपने वालदैन की कब्रों की या उन दोनों में से एक की कब्र की जियारत की, फी यौमिल जुमा, जुमे के दिन, गफिरा लहू, उसकी मगफिरत हो गई, कुतिबा लहू बिर्रन, अल्लाह के नजदीक वो नेक लिखा गया। गौर करो, अगर वालदैन जिंदा हैं और चेहरे की जियारत कर ली तो हज का सवाब, और अगर दुनिया से रुखसत हो गए, कब्र में पहुंच गए, तो जिसने जुमे के दिन अपने वालदैन की कब्रों की जियारत की, दोनों की या एक की, सरकार ने फरमाया गुफिर लहु, उसकी मगफिरत हो गई, अल्लाह के नजदीक नेक लिखा गया, यानी उनका जिंदा रहना भी नेमत है और दुनिया से चले गए वो भी मगफिरत का सबब है। सिर्फ कब्रों की जियारत कर दो, यहां तो कैफियत यह है कि वालदैन अगर कुछ कहें तो हम उनकी हुक्मजूली करते हैं, अपनी मर्जी उनकी मर्जी पर ठोकने की कोशिश करते हैं, नहीं हम जानते हैं, हम ज्यादा जानते हैं। अरे जिसने तुम्हारी परवरिश की, बचपन से लेकर तुम्हें जवान किया, अपने खून पसीने की कमाई तुम्हें खिलाकर जवान किया, वो कुछ नहीं जानता, तुम उससे ज्यादा जानते हो। जितनी तुम्हारी उम्र है उससे ज्यादा तुम्हारे बाप का तजर्बा, नहीं जी नहीं हम ज्यादा जानते हैं, ये कैफियत आजकल की। तो जो ज्यादा जानते हैं फिर उनका यही होता है, फिर वो ज्यादा खसारे में भी रहते हैं, फिर वो ज्यादा नुकसान में भी रहते हैं। फला वही पाते हैं, कामयाबी इस दुनिया में वही हासिल करते हैं जो दुनिया में वालदैन की खिदमत करते हैं और उनकी दुआएं हासिल करते हैं। इस दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ए इलाहुल आलमीन, कौन शख्स है जो जन्नत में मेरे साथ होगा, मैं उससे मिलना चाहता हूं। मिलना चाहते हो, फना इलाके में चले जाओ, एक कसाई है वो जन्नत में तुम्हारे साथ। बड़े हैरान हूं मैं, जलीलुल कद्र पैगंबर, मैं मूसा कलीमुल्ला, मेरे साथ एक मामूली कसाई, कहां पर, कहा फना इलाके में चले गए, सलाम कलाम हुआ, जाकर खड़े हो गए दुकान पर, कुछ बातचीत हुई, देखते रहे ये क्या करता है, लोग आते रहे, वो गोश्त बना बना के देता रहा, वो आते रहे देता रहा, खरीदो फरो होती रही। जब उसका काम खत्म हो गया, कहा भाई मैं तुम्हारे साथ घर चल सकता हूं, हाथ तशरीफ ले आई, अल्लाह के पैगंबर कौन मना करेगा, अपने साथ ले गए। इन्होंने देखा कि इस पूरे दिन में इसका कोई अमल ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से ये जन्नत में मेरे साथ हो, चलो घर चल के देखें, वो अपने साथ घर ले गया। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने देखा कि जिस वक्त वो घर में दाखिल हुआ, अपने कपड़े तब्दील करने से पहले, अपना मुंह धोने से पहले, कोई भी काम करने से पहले एक कमरे में चला गया, देखा कि एक बूढ़ी नहीफ नातवा कमजोर एक औरत चरपाई पर लेटी हुई, और इतनी कमजोर कि उससे खुद उठा भी नहीं जाता। इसने जाकर उसको सलाम किया और उसके बाद खाने का एक प्याला लेकर आया, रोटी के टुकड़े उस शोरवे में उसने तोड़कर बिल्कुल बारीक करके उसमें डुबोए, उस औरत को, बूढ़ी औरत को उठाकर अपनी गोद में बिठाया और एक एक टुकड़ा बिल्कुल बारीक करके उसके मुंह में डालता रहा। मूसा अलैहि सलाम देख रहे, डालता रहा, खिलाता रहा, खिलाता रहा। जब उसने आहिस्ता से हाथ ऊपर किया, जिसका इशारा था कि बस, फिर इसने रोक दिया, और जब इसने रोक दिया तो बूढ़ी ने दुआ के लिए हाथ उठाए। मूसा अलैहि सलाम ने अपना कान उसके करीब कर दिया, देखूं क्या दुआ कर रही है। उसने दुआ की, मौला ये मेरा बेटा मेरी बड़ी खिदमत करता है, तू इसे जन्नत में मूसा के साथ जगह अता फरमा। देखा मां की दुआ का असर, जन्नत में मूसा अलैहि सलाम के साथ जगह अता फरमा दे। फरमाया बस यही अमल है और कोई अमल ऐसा नहीं तेरा जो तुझे जन्नत में मेरा साथ नसीब करे। तो अपनी मां की खिदमत करता है, मैं मूसा हूं, मैं तुझे बशारत दे रहा हूं, खालिक कायनात ने फरमाया तू जन्नत में मेरे साथ हो। यह है वालदैन की खिदमत का सिला। औलाद पर जो वालदैन के हुकूक हैं वो यही हैं, हम तो वो ही समझते हैं, अब इनको उठा के बिठाना है, अब इनको ये करना है, अब इनको लेके जाना है। बाप ने कहा मुझे बाजार ले जाओ, तो बेटा कहता नहीं मुझे तो काम है, मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूं। वो कहता मेरा ये काम कर दो, नहीं मुझे तो अपनी बीवी को लेके जाना है, मुझे तो ससुराल जाना है, मुझे तो फला जगह जाना है। ये नहीं सोचते कि वालदैन की नेमत सिर्फ जिंदगी में एक मरतबा मिली है, इसके बाद नहीं मिलेगी। जब वो दुनिया से चले जाएंगे तो फिर सर पकड़कर रोगे कि कैसी नेमत जो थी वो हमसे छिन गई। अरे आज वालदैन जिंदा हैं, रोजाना उनके चेहरे की जियारत करो, हज का सवाब ले लो। जो कुछ वो कहें अपनी मर्जी को उनकी मर्जी में खत्म कर दो, अपनी राय को उनकी राय के आगे कुर्बान कर दो, उनका काम पहले कर लो, उनसे दुआएं ले लो, दुनिया से चले जाएंगे, तुम इस दुनिया में सर बुलंद रहो। हर जगह देखो मां की दुआ का असर, गौसे आजम को देखो तो मां की दुआ का असर है, इमाम अहमद गजाली मोहम्मद गजाली मां की दुआ का असर है, इमाम हसन हुसैन फातिमतुज़्ज़हरा की दुआ का असर। किसी ने देखा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी, जुर्रात, अज़्म, इस्तक़लाल, उसके वाकयात सुने, उसने कहा क्या बात है, क्या इस उम्मत में कोई दूसरा हुसैन पैदा नहीं हुआ? जवाब देने वाले ने कहा दूसरा हुसैन इसलिए नहीं हुआ कि कोई दूसरी मां फातिमतुज़्ज़हरा नहीं हुई, पहले फातिमा जैसी मां पैदा हो फिर हसन हुसैन जैसे फर्जंद पैदा होते। मां के खून का असर उसके दूध का असर होता, अगर मां नेक हो औलाद भी नेक होती, तरबियत अच्छी हो तो औलाद नेक होती। हम इस तरफ से गाफिल हैं, आज अपनी औलाद पर सही तरबियत उनकी कीजिए और उनकी तरबियत पर तवज्जो कीजिए, कल आप दुनिया से चले जाएंगे, सवाब जारी रहेगा, अमल वो करेगा सवाब वालदैन को मिलेगा, इसलिए कि उनकी तरबियत की वजह से वो अमल कर रहा। औलाद अगर नेक हो तो वालदैन को सिला मिलता है और वालदैन नेक हो तो औलाद को सिला मिलता है, यह भी एक फैक्ट है, अगर बाप नेक हो औलाद को सिला मिलेगा इसी दुनिया में, और बाप ने अपनी औलाद की सही तरबियत की वो दुनिया से चला गया, कब्र में सवाब जारी मिल रहा। सफर मजमाउल बहरैन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व ताला ने इस सफर का जिक्र किया, हजरत मूसा अलैहि सलाम और हजरत खिजर अलैहि सलाम इन दोनों ने एक साथ सफर किया था। हजरत मूसा अलैहि सलाम से किसी ने पूछा था सबसे बड़ा आलिम कौन है, फरमाया मैं। उन्होंने यह सोचा होगा कि मैं अल्लाह का नबी हूं तो जाहिर है मुझसे ज्यादा इल्म कौन हासिल करेगा, मुझसे ज्यादा इल्म और किसको होगा, जाहिर है अल्लाह तबारक बताला जिसे मनसबे नबूवत पर फाइज फरमाता है उसे तमाम उलूम भी अता फरमाता है। ऐसा तो नहीं कि किसी को मनसबे नबूवत पर इतने अजीम मनसब पर बिठा दे और वो कुछ ना जानता हो, नामुमकिन है। उन्होंने कहा मैं हूं, मैं सबसे ज्यादा इल्म जानता हूं। खालिक कायनात ने फरमाया नहीं मूसा, ए तुमसे ज्यादा एक और जानने वाला भी है। अच्छा वो कौन है? वो हमारा एक बंदा है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। मिल लो, एक मछली ले लो, उसको ज़िबा करो, उसको भूनो, उसको अपनी टोकरी में डाल लो और सफर करो, जहां पर दो दरिया मिल जाएं आपस में और वो मछली जिंदा होकर दरिया में कूद जाए वहीं हमारा बंदा मिलेगा, वहीं हमारा बंदा। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया ठीक। इन्होंने अपने एक साथी जिनका नाम था हजरत युशै बिन नून उनको साथ ले लिया, मछली ले ली, उसको बनाया, उसको भूना, टोकरी में डाला, उसको जंबील कहते हैं, और लेकर चले, चलते रहे, सफर करते रहे दरिया के किनारे किनारे कि जहां पर दो दरिया मिलेंगे मजमाउल बहरैन और मछली जिंदा होकर दरिया में चली जाएगी वहीं वो बंदा मिलेगा जिसको अल्लाह ने सबसे ज्यादा इल्म दिया। जब सफर करते करते थक गए तो इन्होंने अपने साथी से कहा हजरत युशै बिन नून से कि मैं जरा थक गया हूं कुछ देर आराम कर लूं। उन्होंने कहा ठीक। हजरत मूसा अलैहि सलाम लेट गए, वो भी लेट गए, दोनों को नींद आ गई। जिस वक्त ये लेटे वहीं पर मछली जिंदा हुई और दरिया में उसने छलांग मार, और इस मंजर को देखा हजरत युशै बिन नून ने, हजरत मूसा अलैहि सलाम ने नहीं देखा, वो आराम फरमा रहे। इन्होंने सोचा कि मैं उनको बताऊं क्योंकि उन्होंने फरमाया था जहां ऐसा हो तो मुझे बता देना, चलो ठीक है अभी ये सो रहे हैं उठाऊंगा आराम में खलल पड़ेगा मैं बाद में बता दूंगा, बात जहन से निकल गई, ये भी सो गए। अब दोनों बेदार हुए और बेदार होते ही फिर सफर करना शुरू कर दिया। चलते रहे चलते रहे, सफर करते करते कहां से कहां निकल गए। जब काफी आगे पहुंचे तो इनको भूख महसूस हुई, भूख लगी। इन्होंने कहा लाओ भाई वो मछली लाओ, वो जो हमने भून के रखी थी ना वो मछली लाओ खाएं, भूख लग रही। अब उनको याद आया, उनका अरे वो मछली तो जिंदा होकर समंदर में कूद गई। कब? कब? जहां आप आराम करने के लिए लेटे थे। उनका अरे वहीं तो अल्लाह का बंदा था, अल्लाह ने फरमाया जहां दो दरिया मिलेंगे और मछली जिंदा होकर समंदर में चली जाएगी वहीं अल्लाह का बंदा। कब मुझसे गलती हुई, मैं माफी चाहता हूं, आप आराम फरमा रहे थे, मैंने सोचा आराम में खलल पड़ेगा, मैंने उठाया नहीं, बस ये गलती हुई। फरमाया चलो वापस। फिर दोबारा दोनों वापस चले। फिर सफर करते 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 उस मकाम पर पहुंचे, देखा कि एक साहब सफेद चादर ओढ़े हुए लेटे। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और चादर अपने चेहरे से हटाई, कहा इस जमीन पर सलाम करने वाले कहां से आ गए। वो कौन थे? वही हजरत खिजर अलैहिस्सलाम थे, जिनका नाम उलमा ने मुफसरी ने लिखा बलिया बिन मलकान, उनका असल नाम ये है, और खिजर, खिजर के माने सब्ज, ये उनका लकब है, इसलिए कि जहां वो कदम रखते थे वहीं सब्ज घास उगाती। और एक रिवायत में यह आया कि जिस घोड़े पर सफर करते थे वो घोड़ा जिस मकाम पर कदम रखता था वहां से सब्ज घास उगाती, जिस जगह बैठते थे जब वहां से उठकर जाते थे तो सब्जा उग जाता। इस वजह से खिजर ये उनका लकब हुआ और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर। खैर, कहने का मतलब ये है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। उन्होंने कहा नहीं, तुम नहीं रह सकते। नहीं, मैं तो रहूंगा। अच्छा, क्यों रहोगे? मैं कुछ इल्म सीखना चाहता हूं। उन्होंने अच्छा एक शर्त है कि मेरे मामले में बोलना नहीं है, मैं जो कुछ करूं बोलना नहीं है। खैर, वो तफसील तो अलग है, मैं फिर वो बिल्कुल मौजू से हट जाएंगे, मैं सिर्फ एक चीज बयान कर दूं। औ वलदुन सालेह, नेक औलाद, बाप की नेकी का सिला किस तरह औलाद को मिलता है। तीन काम उन्होंने किए हजरत खिजर अलैह सलाम ने, जिस पर हजरत मूसा अलैह सलाम को गुस्सा आया और उन्होंने फौरन कहा ये क्यों आपने कर दिया। बहरहाल, जब इनका सफर अलग हुआ तो उन्होंने बता भी दिया कि मैंने क्यों किया था, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से वो काम किए थे। उन कामों में से एक काम यह था कि ये दोनों एक गांव में गए, गांव वालों ने इनकी कोई मेहमान नवाजी नहीं की, जैसे कोई मुसाफिर आता है ना उससे पूछते हैं कि क्या पिएंगे क्या खाएंगे क्या चीज, कुछ नहीं, अच्छा सलूक नहीं किया। जब ये गांव से बाहर निकलने लगे तो देखा एक दीवार गिर रही, बिल्कुल गिरने के करीब, तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उस गिरती हुई दीवार पर हाथ लगाया, उसको दुरुस्त कर दिया, यानी जो गिर रही थी ना सिर्फ हाथ लगाने से बिल्कुल सीधी हो गई। अब इनको गुस्सा आया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, ये आपने क्या किया, ये दीवार गिरती थी तो गिरने देते, आपने क्यों सीधा कर दिया। फरमाया क्यों, और अगर आपने सीधा किया था तो इसकी उजरत ले लेते, इन्होंने तो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, गांव वालों ने खाने को नहीं पूछा, पानी को नहीं पूछा, किसी चीज को कोई सलूक अच्छा नहीं किया, और आपने इनके साथ यह सलूक किया कि दीवार जो गिर रही थी हाथ लगाकर उसे दुरुस्त कर दिया। उन्होंने कहा देखो मैंने कहा था ना नहीं बोलना तुम, इन नकल तस्तती माई या सबरा, तुम मेरे साथ सबर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, नहीं अब नहीं होगा। इस तरह दो तीन वाकयात हुए। तो ये जो वाकया था, जब उन्होंने कहा कि बस अब हो चुका, हर मामले में तुम बोलते हो बाद में कहते हो नहीं होगा, तुम्हारा रास्ता अलग मेरा अलग, अब तुम इधर जाओ मैं उधर जा रहा हूं, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा चलो ठीक है, रास्ता तो अलग हो गया लेकिन जो मामलात हुए वो तो मुझे बता दें कि क्यों हुए। तो उन तीन मामलात में से जो ये तीसरा था, जो दीवार दुरुस्त की थी, तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस दीवार के नीचे दो यतीम बच्चों का खजाना दफन था। उस दीवार के नीचे दो यतीम बच्चों का खजाना दफन था। वो दीवार गिरने के करीब थी, वो गिर जाती खजाना जाहिर हो जाता, बच्चे तो कमसिन थे, गांव वाले आकर खजाना लूट कर ले जाते, बच्चों के कुछ हाथ नहीं आते। मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से उस दीवार को दुरुस्त कर दिया इसलिए कि जब बच्चे बड़े होंगे, जवान होंगे, सने शऊर को पहुंचेंगे, तब अल्लाह के हुक्म से दीवार गिरेगी, खजाना जाहिर होगा, बच्चों को मिल जाएगा। और ये सब क्यों किया? कुरान ने कहा वकाना अबू हुमा सालेहा, उनका बाप नेक था, इन दोनों का बाप नेक था। ये है असल पॉइंट समझने का। बच्चे तो नेक थे नहीं, बल्कि नेक क्या कहें, उनका तो कोई अमल ही नहीं था, मासूम थे ना, उन्होंने गुनाह किया ना कोई नेकी की, भाई मासूम बच्चे हैं ना, गुनाह या नेकी कोई उन्होंने की नहीं, उस सने शऊर को नहीं पहुंचे, बालिग नहीं हुए। उनके साथ जो ये एहसान किया जा रहा है और खालिके कायनात अपने नबी के जरिए ये काम करा रहा है, क्यों? वकाना अबूहुमा सालेहा, उनका बाप नेक था, उसकी नेकी का सिला औलाद को मिल रहा। और मुफस्सिरीन किराम ने लिखा वो बाप जिसके सुल्फ से ये पैदा हुए उसका जिक्र नहीं है, उनकी नस्ल में कोई चौथी या पांचवीं पुश में कोई नेक गुजरा था, उसकी नेकी चली आ रही थी, उसका सिला इनको मिला। अब बात समझ में आई, चौथी पांचवीं पुश में उसकी नेकी चली आ रही है, तो जिसका हकीकी बाप नेक हो उसको सिला नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? पता चला वालदैन नेक हो तो औलाद को सिला मिलता है, और औलाद नेक हो और वालदैन दुनिया से चले जाएं उनको भी सिला मिलता है, सवाब जारिया की सूरत, सवाब जारी रहता है। इसलिए हमें यह चाहिए कि हम खुद नेक बने ताकि हमारी औलाद को सिला मिले, और साथ साथ उस औलाद की अच्छी तरबियत करें ताकि हम दुनिया से चले जाएं तो सवाबे जारिया रहे, सवाबे जारिया रहे। इस तरफ खास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन हम इस चीज से गाफिल, हम कहते नहीं जब बड़ा होगा तो कर लेगा, जब बड़ा होगा तो नमाज पढ़ लेगा, नहीं, बचपन से। इसीलिए कहा अद्दिबू औलादकुम अला सलासा खसाइल, अपने बच्चों को तीन चीजें सिखाओ, तीन, हुब्बे नबीयकुम व हुब्बे अहले बैत व तिलावतुल कुरान, अपने नबी की मोहब्बत, नबी के अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तिलावत, ये तीन चीजें अगर अपनी औलाद को सिखा दोगे इस दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत दिल में होगी तो कोई गलत काम नहीं करेगा, अहले बैत की मोहब्बत दिल में होगी तो कोई गलत रास्ते की तरफ, गुमराही की तरफ नहीं जाएगा, तिलावत कुरान करता रहेगा, हिदायत ही हिदायत है, रहमत ही रहमत है, करम ही करम। ये काबिल गौर बात। तो कहने का मतलब क्या है, हमें अपने आप को दुरुस्त करना, अगर हमें अपनी औलाद को दुरुस्त करना है हम अपने आप को दुरुस्त कर। आप सुबह उठ जाइए, कहते नहीं उठा नहीं जाता, किसी को अगर फजर के बाद का वजीफा बताओ तो वो बेचारा हंसने लगता है कि नहीं ये तो जरा मुश्किल है, ईशा के बाद पढ़ लो, तो फजर के बाद क्या हुआ, कहने नहीं उठा नहीं जाता। जब रात को 2 बजे तक होटल पे बैठकर बातें करते रहोगे और फिर आकर घर में सोगे तो फजर के वक्त क्या खाक उठोगे? जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ। जब फरिश्ते रहमतें बरकतें लेकर नाजिल हो रहे हैं तो हम पड़े सो रहे, अब बाद में वावेला करते, कारोबार नहीं है, दुकान नहीं चल रही, घर में बरकत नहीं है, लड़ाइयां हो रही हैं, रिजक में बरकत नहीं है, जो बरकत लेने का टाइम है उस वक्त उठ जाओ, बेदार हो जाओ। उस वक्त बेदार हो जाओगे, अपने गर्म बिस्तरों को छोड़कर वुजू करके अपनी पेशानी को उसकी बारगाह में झुका दो, फिर देखो कैसी रहमतें बरकतें नाजिल करते। कम भी कमाओगे बरकतें इतनी शामिल हो जाएंगी कि वो सारे महीने पूरा हो जाए, और अगर ऐसा नहीं तो हजारों लाखों रुपया इंसान घर में लाता है हराम का, लेकिन वो बीमारी में, वो मुसीबत में, वो परेशानी में, वो सब का सब जाया हो जाता, सब जाया हो जाता। इस बरकत को असल में हम समझते नहीं, ये बरकत क्या है, थोड़ी सी चीज ज्यादा हो जाए, एक आदमी का खाना 70 आदमी खा लें, एक प्याला दूध 70 सहाबा पी लें, ये सारी बरकतें ही तो है। अरे एक प्याला दूध तो एक आदमी पी सकता है, मेरे आका ने 70 सहाबा को पिला दिया और फिर भी बाकी बचे। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वे खंदक के मौके पर सरकार की शिका में मुबारक पर दो पत्थर बंधे हुए, दो तीन दिन से कुछ खाया पिया नहीं, सख्त सर्दी है, हवा तेज चल रही है, न सहाबा ने कुछ खाया ना आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला ने देखा, बड़ा अफसोस हुआ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं खाया, दो पत्थर पेट से बंधे हुए। फौरन दौड़े हुए अपने घर तशरीफ ले गए, एक बकरी का बच्चा जिबा किया, अहलिया को गोश बनाकर दिया, कहा ये तुम पकाओ, मैं सरकार को लेकर आ रहा हूं। अब ये बताइए कि एक बकरी का बच्चा छोटा सा कितने आदमी खाएंगे? कोई 100-150 आदमी खा लेंगे? अरे 2-4 आदमी खा लेंगे, एक हांडी पकेगी वो भी चंद बोटियां होंगी, 2 आदमी 3 आदमी। इन्होंने अंदाजा किया और फौरन दौड़े हुए सरकार की बारगाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक बकरी का बच्चा जिबा किया है और वो अहलिया को पकाने के लिए दिया है, सिर्फ आप तशरीफ ले आइए। किस बात पर जोर दिया? आप तशरीफ ले आइए। क्यों? ये जानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत ही नहीं जब तक सबको ना खिला दे खुद नहीं खाए। अरे जो चीज आती बारगाह रिसालत में असाबे सफा को भेज देते, जाओ मेरे वो गुलाम बैठे भूखे प्यासे, जाओ उनको दे दो, जाओ फलां को दे दो। अब इनको पता था सरकार की आदत है ये सबको ना बुलावा दे दें, हुजूर सिर्फ आपके लिए। सरकार ने फरमाया अच्छा हमारे लिए, हाँ ठीक है चले तशरीफ ले चले। फरमाया जाओ अबू बकर उमर उस्मान अली को बुला लो, जाओ सलमान फारसी सुहेब रूमी बिलाल अबकी अब्दुल्ला इब्ने मसूद सबको बुला लो, जाबिर ने हमारी दावत की है चलो सब। अब क्या कैफियत होगी आप खुद जानते हैं, जो आदमी दावत करे 2 आदमियों की और आ जाए 150 आदमी तो इज्जत का सवाल है, तो परेशान हो जाएगा। और कहा किसने? नबी पाक अलैहिस्सलाम मना भी नहीं कर सकते। अब दिल ही दिल में परेशान है कि अब क्या होगा। खैर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम अपने गुलामों के झुरमुट में पूरा जुलूस जा रहा है हजरत जाबिर की दावत में, और हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु परेशान है कि मैं क्या करूं। इन्होंने क्या किया? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम तो आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा चलते हुए तशरीफ ले जा रहे हैं, सहाबा भी उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सरकार के साथ चल रहे हैं। ये तेज तेज कदम दौड़ा के घर पहुंच गए। मैं पहले जाके अहलिया को बता दूं कि इतने लोग आ रहे हैं। जाकर कहा अरे मैंने तो सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की थी, हुजूर ने तो सबको दावत दे दी, अब क्या होगा? सुनो उस सहाबिया का ईमान और अपने ईमान को ताजा करो, कैसा यकीन था अपने रसूल की जात पर और कैसी मोहब्बत थी उनको उन नफूस कुदसिया को अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब इन्होंने कहा कि हुजूर ने सबको दावत दे दी, अहलिया ने पूछा ये बताओ दावत तुमने दी है या उन्होंने दी है, दावत तुमने दी है या उन्होंने? कहा उन्होंने। कहा फिर फिक्र नहीं है वो खुद ही खिलाएंगे, फिर फिक्र नहीं है खुद ही खिलाएंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, नारा भी लगा था ऐसे फुसफुसा लगाया। खैर बहरहाल ये ईमान था, ये यकीन था कि जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आ रहे हैं अगरचे कम है लेकिन आका खुद ही खिलाएंगे, तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं है, जब उन्होंने दावत दी है तो वो खुद ही खिलाएंगे। इतनी देर में नबी पाक अलैहिस्सलाम पहुंच गए, घर में दाखिल हुए, कहां है हांडी? कहा हुजूर इधर हांडी पक रही है। लोआबे दहन उसमें डाल दिया। कहा निकाल निकाल के देते रहो, खोल के मत देखना। आटा कहां है? रोटी कहां पक रही है? इधर है। लोआबे दहन डाल दिया, यहां से पका के देते रहो, देखने की जरूरत ही नहीं है। हुजूर के लोआबे दहन में भी बरकत है। ये तो बदबख्त है कि हम हुजूर की तरह, हुजूर हमारी तरह, कह रहे तुम अपना लुआब डाल के देखो, पता चल जाएगा कितने जरासीम होंगे, सारे लोग बीमार हो जाएंगे, सारे ही बीमार हो जाएंगे। जगह जगह लिखा होता है ना कि यहां मत थूकिए, लिखा होता है ना मत थूकिए, क्यों? आपके थूक में जरासीम है, अगर आप जगह जगह थूकेंगे जरासीम फैलेंगे, बीमारी फैलेगी, अरे आका की शान ये है कि जिस हांडी में चला गया वहां बरकत हो गई, जिस आटे में चला गया वहां बरकत हो गई, जिस कुएं में चला गया खारी कुआं मीठा हो गया। जब तुम अल्लाह या रसूल अल्लाह ये लगा ना जानदार ना, पता चला किसी नौजवान ने लगाया। तो जब तुम्हारा लुआब हुजूर के लुआब की तरह नहीं हो सकता तो तुम हुजूर की तरह कहां हो सकते हो? ये तो बेवकूफ है। सरकार ने लुआब पे दहन डाल दिया। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जगह कम है, घर छोटा है, दस दस सहाबा आते रहे, खाकर जाते रहे, आते रहे जाते रहे। जगह कम थी ना, दस दस सहाबा की एक टोली बना दी। दस सहाबी आए, उन्होंने खाया वो चले गए, फिर दस आए खाया फिर चले गए, फिर दस आए, और उन्होंने क्या किया, वो निकाल निकाल कर दे रही हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेकर आ रहे हैं, सब खा रहे हैं, जा रहे हैं, 150 ने खा लिया या इससे ज्यादा, या इससे ज्यादा, एक बकरी का बच्चा। और बाद में देखा उतना ही खाना था जितना पकाया था, उतना ही था जितना पकाया था, कोई कमी नहीं। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तनाबुल फरमाया और बाद में उतना ही घर वालों के लिए छोड़ दिया जितना उन्होंने पकाया। सरकार ने यह बता दिया, तुम हमें नहीं खिला रहे, हम तुम्हें खिला रहे। तुम हमें क्या खिला रहे हो? अगर तुम खिलाते तो एक आदमी खाता, दो आदमी खाते, तीन खाते, इससे ज्यादा नहीं खा सकते थे। अरे ये हमारी बरकत है, लुआबे दहन की बरकत है, दो आदमियों का खाना 150 ने खा लिया और फिर भी उसमें बरकत ही बरकत रही। गौर करो, जिनके नाम में बरकत है, जिनके जिक्र में बरकत है, जिनके लुआब में बरकत है, जिस रोजे में वो आराम फरमा है, वहां बरकत ना हो तो कहां पर हो, वहां रहमत ना हो तो कहां पर हो। इसलिए हम इस चीज को समझते नहीं। अगर इंसान रिस्के हलाल कमाए, अपनी औलाद की सही तरबियत करे, फजर के लिए गर्म बिस्तरों को छोड़कर उठ जाए और अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका ले, फिर देखे कि उसके रिजक में रोजी में कितनी बरकतें होती। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में ऐसी ही बरकतें नाजिल फरमाता है जैसे उस वक्त नाजिल फरमाई। देखने में कम होता है लेकिन पूरा महीना आराम और सुकून से गुजर जाता है। और जो हराम की तरफ जाता है, जो सूद खाता है, जो झूठ बोलकर रिजक कमाता है, जो धोखा देकर फिर रिजक कमाता है, वो बजाहिर देखने में हजारों लाखों अपने घर लेकर आता है लेकिन वो सारा पैसा बीमारी में, मुसीबत में, परेशानी में और दीगर हादसात में ऐसे ही निकल जाता है। रिज़्क हराम में कभी बरकत नहीं हो सकती। रिज़्क हलाल का एक लुकमा अगर है, उसी में बरकत है, उसी में रहमत है, उसी में करम है। इसलिए अहद कर लीजिए कि आज के बाद से कभी सूद ना लेंगे, ना देंगे, ना खाएंगे, ना किसी को खाने देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, धोखा देकर माल नहीं कमाएंगे, रिश्ते हलाल खुद भी खाएंगे और अपनी औलाद को भी खिलाएंगे। अगर इस तरह करें औलाद फरमा बरदार रहेगी। अक्सर औलाद जो नाफरमान होती इसीलिए कि बाप जो कुछ गलत पैसा कमाकर घर में लाता है और उससे जो रिजक होता है और वो रिजक खाकर वो जो रिजक खून बनकर जिस्म में दौड़ता है तो वैसे ही आमाल और अफाल सरजद होते, वैसे ही आमाल और अफाल सरजद होते। इसलिए अपनी औलाद को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमा बरदार बना लो। जब औलाद अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदार होगी, खुद ब खुद आपकी फरमा बरदार हो जाएगी, खुद ब खुद। बाद लोग कहते हैं कि दीन को पसे पोई डाल देते, दीनी तालीम नहीं। डॉक्टर बन जाए कमाएगा, इंजीनियर बन जाए तो कमाएगा, पायलट बन जाए तो और ज्यादा कमाएगा, दुनियावी ओहदे, दुनियावी मनसब, दुनियावी तालीम, इससे इनकार नहीं। इस्लाम ने दुनियावी तालीम हासिल करने से मना नहीं किया। आप इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, वकील बनाएं और किसी शोबे में भेजें, लेकिन दीन सब पर मुकद्दम, दीन मुकद्दम हो। वो कैसे होगा? जब बचपन से उसको दीनी तालीम दी जाएगी। और दीनी तालीम सिर्फ ये नहीं है कि आप सोचें कि उसको किसी मदरसे में दाखिल किया जाए, उलमा की सोबत में, उलमा के जलसों में, उलमा की महाफिल में, इसी तरह जुमे के दिन उलमा की तकारीर दीकर ऐसी महाफिल में उसको बिठाएं, खुद तालीम दें, खुद बताएं, बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन के वाकयात सुनाएं, फिर आप देखें कि फिर उसका जहन पाक होगा, साफ होगा, और ये तमाम कदूरतें, तमाम शैतानी ख्याल उसके जहन से निकल जाएंगे। फिर क्या है, वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, किसी ओहदे मनसब पर पहुंच जाए, लेकिन मुसलमान रहेगा, मुसलमान रहेगा। और आजकल क्या होता है, हम दीनी तालीम दिलाते नहीं, बाज दफा तो ऐसा होता है कि कुरान भी नहीं पढ़ाते। बहुत से लोग ऐसे आते हैं, जी हमने तो कुरान भी नहीं पढ़ा, कुरान भी नहीं पढ़ाते। कम से कम नाजरा कलाम पाक जरूर पढ़ाना चाहिए, या 10 सूरतें याद जरूर होनी चाहिए ताकि वो अपनी नमाजें तो अदा कर सके। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनको नमाज में भी मसला, हमें सूरतें याद नहीं, कोई कहता है सिर्फ 2 सूरतें याद हैं, कोई कहता है 3 याद। तो अगर कोई ऐसा है कि जिसने नहीं पढ़ा वो अब भी पढ़ सकता, उम्र की कैद नहीं है, कुरान पढ़ने में उम्र की कैद नहीं है, कोई भी इल्म हासिल करने में उम्र की कैद नहीं है, खास तौर पर दीन का इल्म हासिल करने में उम्र की कैद नहीं, और इसमें शर्म की जरूरत भी नहीं है। कुरान का यह एजाज है कि 9 साल का बच्चा याद करे उसे भी कुरान याद है, 22 साल का जवान याद करे उसे भी याद हो जाएगा, 80 साल का बूढ़ा याद करे उसे भी याद हो जाएगा। ये याद करने वाले का कमाल नहीं है, ये कुरान का कमाल है। आप कोशिश करें तो पहले उसको सच्चा मुसलमान बनाइए। मैंने एक वाकया पढ़ा तो मुझे बड़ी हैरत हुई, और अपने नौजवानों पर, उन नौजवानों पर जो दीनी तालीम से बेबहरा हैं बिल्कुल, और अंग्रेजी तालीम उन्होंने हासिल की, तो वो क्या करते, दीन पर एतराज करना अपना पैदाइशी हक समझते, ये फला चीज क्यों है, ये चीज गलत है, वो चीज गलत है, वो चीज गलत है। अंग्रेजी तालीम हासिल कर ली, दीनी तालीम नहीं है, और दीन पर एतराज कर रही, इसीलिए कि दीनी तालीम उनके पास नहीं है। एक आदमी ने लिखा, वो कहता है कि मैं इंडिया गया सैर के लिए, और ये बिल्कुल सही वाकया उसने लिखा, अपना चश्मदीद गवाह, दरियाए जमुना इंडिया में है, उसके किनारे ये लोग अपने मुर्दों को जलाते हैं। आप जानते हैं ना, हिंदू जो हैं मुर्दों को जलाते हैं, मुसलमान जो हैं वो दफन करते हैं। वहां जो जलेंगे जलेंगे, ये पहले ही जला देते। देखो अल्लाह ने वैसे ही इंतजाम कर दिया, वहां तो जो जलेंगे दुनिया में खुद ही जला देते। अब जब वो जल जाते हैं तो उनकी हड्डियां रह जाती हैं, उसमें ताफुन, बदबू, ये चीज पैदा होती है। उनकी हड्डियां उस दरिया में तैर रही होती हैं, लहरें आती हैं तो वो इधर आती हैं उधर जाती हैं, यानी जो साहिल पे जो पानी होता है निहायत बदबूदार, मुर्दों की बदबू, उनकी राख, हड्डियां, जली हुई हड्डियां। तो इस आदमी ने लिखा कि मैं इंडिया गया सैर के लिए तो दरियाए जमुना गया, तो मैंने देखा कि एक नौजवान आया, और देखने में बहुत अच्छा खूबसूरत नौजवान था, हैंडसम, और उसने आकर अपने कपड़े उतारे, सिर्फ नीचे नेकर पहना और दरिया में छलांग लगा दी। कहने मैं हैरान हुआ कि इतने गंदे पानी में ये नहा रहा है। हिंदुओं का एक अकीदा ये है कि जो इस दरियाए जमुना में नहा ले वो गुनाहों से पाक हो जाता, वो कहते पवित्र हो गया, पाक हो गया, अब इसके कोई गुनाह होना नहीं है, ये इसमें नहा लिया ये पाक हो गया। तो वो मुसलमान नौजवान देख रहा है गौर से कि ये क्या कर रहा है, उसने छलांग लगाई, नहाया और वहां से निकला। जब निकला तो इसने उससे पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो, तो जानते हो उसने क्या कहा, उसने कहा मैं हिंदू हूं और मेडिकल का स्टूडेंट, डॉक्टरी पढ़ रहा था। ये बड़ा हैरान हुआ, मेडिकल का स्टूडेंट, हां तुम जानते हो ये कितना पानी गंदा है, इसमें ताफुन बदबू है, मुर्दे जलते हैं। हां मैं जानता हूं। तो यार तुम तो मेडिकल पढ़ रहे हो, डॉक्टरी पढ़ रहे हो, तुम्हें पता है जरासीम इसके अंदर। अब आप जानते हैं उसने क्या कहा, अपने मजहब का कितना पक्का था, उसने कहा वो हमारी तालीम है, ये हमारा मजहब है, مذہب یہ کہتا ہے کہ جو اس میں نہا لے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، تو تعلیم کچھ بھی کہتی رہے، میڈیکل سائنس کچھ بھی کہے کہ اس میں تعفن ہے، بدبو ہے، جراثیم ہے، لیکن ہم تو مذہب کو اولیت دیتے ہیں. مذہب یہ کہتا ہے جو دریا جمنا میں نہا لے گا وہ پوتر ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. دیکھو وہ جھوٹا مذہب جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں، جو اپنے ہاتھ سے بت بنا کر اپنے سامنے رکھ کر اس کی پوجا کریں، جو اپنے مردوں کو جلائیں، وہ اپنے مذہب پر کتنے پکے ہوں. اور ہم مسلمان کہ جن کا مذہب حقیقت میں سچا اور پکا، اور پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سب میں سب سے زیادہ پاکیزہ مذہب ہے، ہماری کیفیت یہ، ہم دوسروں سے متاثر ہو رہے، ہم اغیار سے متاثر ہو رہے، فلاں جگہ یہ، فلاں جگہ یہ، ہمارے مذہب میں یہ نہیں. ارے تم نے مذہب کو پڑھا ہی نہیں ہے. تم اگر اس مذہب کو پڑھو، اسلام کو، پتہ چل جائے گا جتنے بھی ادیان موجود ہیں ان میں سب سے سچا، سب سے پکا، سب سے اتھینٹک اور سب سے پاکیزہ مذہب اگر ہے تو صرف اور صرف اسلام، اور کوئی مذہب ایسا نہیں. ہمارا قرآن اتھینٹک ہے، ہمارے نبی کی سیرت اتھینٹک ہے، ہمارے نبی کی احادیث اتھینٹک ہے، ہر چیز موجود ہے. پھر اسلام سے کیوں بھاگ رہے؟ پھر دوسروں کی چیزیں کیوں اختیار کر رہے؟ یہ صرف دینی تعلیم اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. ابھی آپ اپنے بچوں پر تربیت دیں، ان کو دین کی سمجھ ابھی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں جانتے. اگر ڈائریکٹ ان کو انگریزی تعلیم میں ڈال دیا تو دین سے بالکل دور ہو جائیں گے. انگریزی تعلیم حاصل کرنا غلط نہیں ہے، آپ ان کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، ان کو وکیل بنائیں، کچھ بھی بنائیں، کسی شعبے سے وہ تعلق رکھتے ہوں، لیکن ان کے اندر دین کی ایسی لگن اور ایسی محبت پیدا کیجئے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سچی محبت پیدا کیجئے کہ پہلے وہ مسلمان ہو بعد میں ڈاکٹر، پہلے مسلمان ہو بعد میں انجینئر ہو، پہلے مسلمان ہو بعد میں وکیل. اس کی بنیاد مضبوط ہو جائے. اور یہ کب ہوگا؟ جب تربیت صحیح ہوگی. تربیت صحیح ہو، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے، یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے بنائی، پوری کائنات انسان کے لیے، اور اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب انسان کے لیے. یہ درخت انسان کے لیے، شجر انسان کے لیے، تو حجر انسان کے لیے، جمادات، نباتات، حیوانات، یہ آبشاروں کے نغمے یہ انسان کے لیے ہیں، یہ دریاؤں کی روانی انسان کے لیے ہے، یہ موتی کی چمک انسان کے لیے ہے، یہ پھولوں کی مہک یہ انسان کے لیے ہے، یہ پوری کائنات انسان کے لیے ہے، اور انسان خدا کے لیے. یہ کائنات خدا نے اپنے لیے نہیں بنائی، یہ ہمارے لیے بنائی، لیکن ہمیں اپنے لیے بنایا. اسی کو ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز میں پیش کیا، وہ کہتے ہیں، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ، کہ بجز حب نبی بیکار ہے ذکر خدا. سجدہ کرنا ہو تو یوں کر، سر ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے، سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے. یہ ہونا چاہیے، سر اللہ کی بارگاہ میں، دل رسول اللہ کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہم آج ہی سے انشاءاللہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. خود نماز پڑھیں گے, اولاد کو بھی پڑھوائیں گے. خود سچ بولیں گے, اولاد کو سچ کی تلقین کریں گے. خود نیک کام کریں گے اور اولاد سے بھی نیک کام کی توقع رکھیں. جب تک ہم نہیں کریں گے تو اس پہ کیسے عمل ہوگا, اس پہ کیسے اثر ہوگا؟ وہ کہے کہ ابا خود تو پڑھتے نہیں, مجھ سے کہتے نماز پڑھ, مجھ سے تو جھوٹ بلوا دیے تھے, کہتا گھر میں نہیں ہے, اور خود کہتے مجھ سے سچ بولو. صحیح بات ہے نا. تو جب تک انسان خود نہ کرے, دوسروں کو تلقین نہ کرے, زبان میں اثر اسی وقت پیدا ہوگا کہ جب خود عمل کرے. تو اولاد کی تربیت پر خاص توجہ دیجیے, خود نماز پڑھیے, انہیں نماز پڑھائیے, خود سچ بولیے, انہیں سچ کی تلقین کیجیے, نیکی کی راہ سکھائیے, قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت خود بھی کریں, اولاد کو بھی کرائیں. اور کم سے کم دین کا اتنا علم ہر مسلمان مرد اور عورت عاقل اور بالغ پر لازم ہے جس سے وہ اپنے دین پر صحیح طور پر عمل کر سکے. ضروری نہیں کہ ہر بچہ قرآن کا حافظ ہو, لیکن کم سے کم اتنی آیتیں اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو, اتنی صورتیں ضرور یاد کرائیں کہ وہ اپنی نماز صحیح طور پر ادا کر سکے. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے وہ دل اجڑے ہوئے گھر کی طرح. آپ قرآن یاد کریں گے, آپ کے سینے میں محفوظ ہوگا, آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگا, اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی. قرآن جہاں بھی ہوتا ہے وہیں رحمتیں ہوتی ہیں. گھر میں ہو تب رحمتیں ہیں, آپ کے دل میں ہو وہاں رحمتیں. اس لیے اس چیز کو اپنے پیش نظر رکھیں. انشاءاللہ تعالی جب ہم ایسا کریں گے تو اس دنیا سے جانے کے بعد ہماری یہی اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.